पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय चैतन्यनाम्ने गौरक्षिते हे कृष्णकरुणासिंहो दीनबन्धो जगत्प्रभुः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौरङ्गीराजे विषभान्ते देवि प्रणमामि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णाय भक्तियापराधलिकाकामादिकर्मकामन्वां शरणं प्रसन्न वृन्दे निमस्ते चरण यं प्रव्रजन्तमनुते समपेतशिष्यं द्वैपायनो विरहकातर्यादिभाव उद्वेति तन्मयतया सर्वो मन्मनाथ मदभक्त मदयादी मां नमस्ते माने वयस्पति पतियानो प्रिय इसके पहले वो कहा है सर्प भूष्य समम सुनु भूय में परमम बच परमम को सबसे पहले लाओ तब क्या हो जाएगा परमम सर्व भूष्य समम भूय सुन में परम परम मैने समस्त वास्तुओं में
जो परम सार
सारों में भी गुह्य और गुह्यों में भी सर्वगुह्य तमाम जो भगवान के लिए बहुत प्रिय थी तुम हमारे बहुत प्रिय हो इसलिए तुम्हें मैं कहता हूँ यदि कोई काय मन और वचन से शरणागत भगवान का न हो और भगवान के प्रतिनिधि गुरु के चरणों में तन मन वचन से शरणागत न हो उसको यह न बतलाएगा इसका ये तात्पर्य यदि कोई तन मन वचन से समस्त इंद्रियों से गुरु के चरणों में शरणागत हो कैसे शरणागत हो शरणागत होकर के वो श्लोक जो पहले बतलाया गया है परिपाते न क्या तदविधि परिपाते न परिप्रश्न न सेवया ये तीन चीजों के द्वारा गुरु जी की सेवा कर रहा हो यदि सेवा कर रहा हो तब तो वो समझे में जिस चीज को लेना चाहता है और योग्य और यदि वो परिपात प्रश्न परिप्रश्न परिप्रश्न मैंने क्या प्रश्न सीधा महाराज इसका क्या उत्तर होगा मत दो उत्तर उसका मत दो उत्तर परिप्रश्न न परिपात पूर्वक और जो श्रवण किया है फिर तब प्रश्न करेगा तब श्रवण किया ही नहीं और प्रश्न करने लगा तो वो प्रश्न करना नहीं जानेगा तो उससे ऊपर झापर की बातें बतला दो बस ये सर्वगुह्य तमाम ये मत बतलाओ इस पर शपथ किया है कृष्ण ने जो तपस्या से द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सका है शरणागत नहीं है गुरु वैष्णव की सेवा न किया हुआ हो तो गीता का ज्ञान मत लेना। प्रचार का ये मतलब नहीं है जहां तहां राष्ट्र के ऊपर में घी डाल दो, ये प्रचार का मतलब नहीं है। जहां तहां जैसे तैसे सब बोल दिया, अधिकारी व्यक्ति अधिकारी देख करके उसके अनुरूप बतलाए। अभी तक अर्जुन को ये सब चीजें नहीं बतलाई थी, अभी तक बतलाया जी हमारे लिए यज्ञ करो, यज्ञ था सुकर्मण, ये बतलाया था, ब्रह्म ज्ञान बतलाया, परमात्मा ज्ञान उन्हें बतलाया। अंगुष्ठ परिमाण भगवान ने चित्त लगाने के लिए कहा, ये बतलाया योगिनां सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना सत्थामान योग विशेषमान बस यही सब बतलाया। कर्म योग से भी श्रेष्ठ है योग, ज्ञान योग से भी ये श्रेष्ठ, तप योग से भी ये श्रेष्ठ, और समस्त योगों में जो लोग अंतर मन से हमारे प्रति शरणागत होकर के हमारी सेवा करते हैं, क्या सब योगिनां सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना, अंतर आत्मा को हमसे योगयुक्त करके श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं मेरा अनन्य भाव से, समस्त योगियों से वो लोग देखते हैं। किंतु अपना स्वरूप यहाँ पर बतलाया नहीं, भगवान के प्रति परमात्मा के प्रति करो। किंतु इसी श्लोक में जो बतला रहे हैं मनमना भाव, मनमना भाव माने कौन मनमना, मम माने कौन, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण वक्ता है। अर्थात श्याम सुंदर बंसीधारी जिनकी बड़ी सुंदर सुंदर अलके हैं, सिर पर मोर मुकुट विराजमान, अधर पल्लों पर बंसी रख करके अपने हृदय का सारा अमृत उस बंसी के छिद्र से निकाल रहे हैं और तेरी त्रिभंग रूप से खड़े हैं, कदम वृक्ष के नीचे वृंदावन में, ऐसे कृष्ण को के प्रति मनमना भाव कहा। इसके पहले मनमना शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है, इसलिए हमने कृष्ण के रूप में ही गोपी का उदाहरण देकर के मैंने मनमना भाव का तात्पर्य समझा है, मनमना भाव। और मधुभक्तो के संबंध में श्रवण की स्मरण बंदन इत्यादि का उदाहरण देकर के भक्तों का कुछ चरित्र मैंने बतलाया कि कैसे उनका भक्त हुआ जाता है। इसके लिए कल हमने कुछ थोड़ा सा आभास दिया किंतु और भी बहुत भक्तों का चरित्र ऐसा है जो जो भगवान को पाए हैं, उन लोगों ने जो साधन किया है, गोस्वामी ग्रंथों में ये गोचर होता है। इसलिए मनमना भाव तो भाव अवस्था में कुछ हो सकता है, किंतु प्रेम अवस्था नहीं, वो ठीक ठीक मनमना भाव हुआ जा सकता है। भाव अवस्था साधन में ये बहुत कम है। मदभक्त तो ये प्रारंभ से श्रद्धा से लेकर निष्ठारूपी आसक्ति भाव यहाँ तक इसका अधिकार मदभक्त। अब इसमें किसी की भाव की प्रबलता है, कुछ गंभीर श्रद्धा होनी चाहिए, इसी का नाम सेवा दी। भक्त माने क्या,
भलिभांति
सेवायां, ये भक्ति है जिसमें सेवा हो। यहाँ पर तीसरा उन्होंने बतलाया मदयाजी भव, याजी याजी माने यजन, यजन यज्ञ, यजन यज्ञ से होता है। यज्ञ में प्रीति न भी रहे थोड़ी सी श्रद्धा भी रहे तो यज्ञ हो सकता है। यज्ञ तो उपन उपचार है, ठाकुर जी का यह अर्चन भी दो प्रकार का होता है, एक सेवा, वो भक्ति में चला गया मत भक्तो भव, और जहाँ अर्चन है ये गजन में आ जाए। आ रहा है समझ में? क्यों हमारे ये महाप्रभु जी और राय रामानंद के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसमें इस पर कुछ बतलाया गया, षोड़श उपचार से कोई मेरा पूजन करता है, कैसे षोड़श उपचार? आसन, आवाहन, आसन, पाद्य अर्घ, आचमन, स्नान, फिर आचमन, फिर वस्त्र आवरण, तिलक इत्यादि, और इसके बाद में भोज्य भोग नैवेद्य, आचमन, तांबूल और फिर पुष्पांजलि। ये सब चीजें अर्चन की षोड़शोपचार है, द्वादश उपचार से और पंचोपचार से भी ये हो सकता है, किंतु यदि उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं दिखेंगे। भूख और प्यास होने पर पानी और भोजन का रसास्वादन होता है, जितना भी टेस्ट छोड़ सुस्वादु भोजन क्यों न हो, भूख न रहे किसी को दिया जाएगा। किस चीज की तरकारी बनी है, सब्जी क्या क्या बनाया है, टेस्ट करेगा। नमक थोड़ा सा कम मालूम होता है, नमक कुछ बेसी हो गया, जरा ये पतली खीर हो गई, ये रोटी थोड़ी सी टेढ़ी है, ये बराबर नहीं, गोल नहीं हुई, अरे तुम्हें गोलाई की जरूरत है न किसी की जरूरत है, ये रसगुल्ला तो ठीक है किंतु चपटा है। ये सब विचार उस समय होगा जब भूख नहीं रहेगा तो क्या करें। हमारे बामन महाराज जी हैं, एक दिन में 5 निमंत्रण हुआ प्रचारों में, तो कहते थे मैं क्या करता हूँ, अब सबका मन रखना है, समय बैठ करके इस तरकारी को वहाँ हटा देता हूँ, उस सब्जी को यहाँ और उसको यहाँ, वहाँ से इसको और थोड़ा सा उसको ऐसे करके जो जिस रूप में था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता और थोड़ा सा ऐसे कर करके और पानी पी करके थोड़ा समय लगा कर फिर दूसरे घर में जाता तो वहाँ पर पूजा तैयार है, वहाँ पर ऐसा कर। भूख नहीं है, यदि भूख रहती क्या चीज है इस पर विचार नहीं, रूखा सूखा रोटी जैसे भी हो, यदि बासी अन्न है तो उसमें पानी देकर के नमक डाल करके थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके और पुलाव है जिसको कहते हैं पुलाव, बहुत सुंदर बना उसको बड़ा। तो ये भूख रहने पर उसकी मर्यादा और तेज उसमें लगता है, भूख है नहीं। यदि साधक में प्रेम नहीं है और वो अर्चन करता है तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं हो, और यदि साधक को प्रेम की भूख है तो वो षोड़शोपचार का एक उपचार से केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तोपहितम स्नामी, जो प्रयत्न करके भगवान को प्रेम से श्रद्धा से जो कुछ पत्रम, पत्र तो खाने की चीज नहीं है किंतु तुलसी का पत्ता भी यदि एक दे दिया है, पुष्पम पुष्प भी खाने की चीज नहीं है तो कृष्ण यदि आएंगे तो गले में उसका फूल की माला दे दूंगा,
गला जो ना,
और यदि नहीं आएगा तो उस फूल को लेकर के पकौड़ी बना करके खा लेंगे, बकफूल एक ऐसा है बहुत कोमल होता है तो उसको बना लेंगे खा लेंगे। तो वो यदि वो भी कोई दे दे, यहाँ तक कि कोमल जो पत्ते हैं उनको भी भगवान से निवेदन करते हैं, तो उसको प्रेम से दिए जाने पर भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, और यदि भक्तों में प्रेम की भूख होनी चाहिए, प्रेम ये किसमें होगा, देने वाले के हृदय। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है, यदि हमको भूख है तो कोई भी चीज सबको भी दे दिया जाए, कोई भी चीज नमक है कि नहीं, यदि मैं देकर के पेट भर खा लेगा और उसका रसास्वादन होगा मुझे, मेरे अंदर में भूख है ना, इसलिए मुझे। यहाँ पर भक्त को प्रेम की भूख हो तो भगवान को प्रसन्नता होती है, ये क्यों, हमें प्रसन्नता होनी चाहिए ना। जयात्मा सुप्रसिद्धि, इसका अर्थ मत लगाना, जयात्मा सुप्रसिद्धि, ये मुझे प्रसन्नता होती है, ये भोग काम हो जाएगा, समझ रहा है, है? वो अर्थ है नहीं भागवत का, जयात्मा यहाँ पर आत्मा का अर्थ मैं मत लगा लेना, भगवान के लिए तो कर रहा है ना, तो वही कुंतां परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज के प्रति वो भक्ति हो रही है तो अधोक्षज को ही प्रसन्न होना चाहिए ना। तो जब ही अधोक्षज का साथ भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हमारी पूजा सफल हुई, और मुझे प्रसन्नता हुई तो क्या समझो, ये तो भोग और काम हो गया। किंतु एक बात है, यदि भगवान को प्रसन्नता हो जाती है तो जीव अपने आप तस्मिन् तुष्य जगत हो जाता है, और यदि अपने प्रसन्नता के लिए भगवान की पूजा करते हो तो ये सकाम भक्ति हो जाएगी, गुनो भक्ति गुणाया भक्ति, ये अच्छी तरह से समझ लेना, अपने प्रसन्न होने की कोई भावना न रहे, अन्य तो केवल अर्चन हो जाएगा। जो लोग अर्चन करते हैं, गृहस्थी में अधिकांश लोग अर्चन करते कहते हैं कि प्रभु हमारे समस्त कर्मों का फल आपके चरणों में अर्पण कर दें, इसलिए इसलिए कि हम और हमारे परिवार के लोग सुखी और शांति नहीं कर सकते, ऐसा अर्चन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत से अर्चन का एक उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाऊंगा। महाराज प्रसिद्ध लिखा ना, पृथ्वी पूजने, पूजने मैंने यहाँ पर जजने, जजन मैंने पूजन अर्चन, कैसे होता है इसको जरा पढ़े तो तुम लोग बहुत बार बार हो गए, हम भी बहुत बार पढ़े थे, किंतु ध्यान से ले, इसलिए इसमें जो आंतरिक अभ्यंतरिक जो शिक्षाएं हैं हम लोग उसको नहीं ले पाते। देखो इसमें कितना सुंदर है कि गाँव के द्वारा समझ अधार्मिक नास्तिक व्यक्ति, ऋषियों ने सहनिक रूप से इस पर आक्रमण किया और हूं शब्द के द्वारा वो मर गया, अपने पापों से ही मरा, भगवान इत्यादि कुछ नहीं मानता था, सब प्रजाओं में त्राही त्राही मचने लग गई, कोई राजा नहीं है, डकैतों का उत्पात होने लगा और तरह तरह के अत्याचार अनाचार होने लगे, लोगों ने निवेदन किया ऋषियों से जिसे आप पृथ्वी की रक्षा करते हो प्रजाओं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक, उसके पैर को जंघा को चीर कर और मक्खन किया जैसे दही मची जाती है लकड़ी से, तो उसमें पाप पुण्य पैदा हुआ, फिर उसके हाथ को यहाँ की तरह मक्खन किया, तो ये ऐसा करने से उनमें से पृथ्वी महाराज उत्पन्न हुए। पृथ्वी मैंने क्या उसका अर्थ किया है, जो अपने सद्गुणों से समस्त विश्व को रक्षा पालन पोषण करेंगे उनका नाम है पृथ्वी, प्री फू पृथ्वी भर में अपने यश का प्रमथन करेंगे, प्रमथन से उस प्रेमी और उसके विश्व में उनकी पृथ्वी छा जाएगी और उसे प्रजाओं का सब पालन पोषण करेंगे। तो अकेले नहीं निकले, एक पेयर निकला, एक जोड़ी निकली, पुरुष और स्त्री। पुरुष का नाम हुआ पृथ्वी। पृथ्वी को घर में अपने गुणों से चारों तरफ जस का अधिकार करने, प्रजाओं का रक्षण करे, इसलिए पृथ्वी। और उनके साथ में जो स्त्री हुई वो लक्ष्मी जी की अवतार, और ये थे भगवान के अवतार, परमात्मा के अवतार। और ये हुई लक्ष्मी जी की अवतार, इनका नाम हुआ अर्थी। जो कार्य करती है उसका नाम है अर्चना। वो क्या करती है लक्ष्मी जी, क्या करती हैं? प्रभु की सेवा करती है। तो ये जो पृथ्वी महाराज के प्रति, भगवान के प्रति जो कुछ कार्य करती है उसका नाम है अर्चना। अर्चना क्या हो गया? अर्चना। और अर्चना का तात्पर्य है सेवा, सेवन से, विशेष करके पूजन। पृथ्वी पूजन ये इन्होंने क्या किया? पृथ्वी को दोहन किया, बछड़ा बनाया सांझो मनु को, और स्वयं दोहन श्रद्धा का पात्र लेकर के इसमें दोहन किया पृथ्वी को। जो पृथ्वी असुरों के अत्याचार से, देवी इत्यादि के अत्याचार से, समस्त अन्न को, दुग्ध को अपने अंदर में छिपा लिया था, अब वो दे नहीं रही थी, असत पुरुष पैदा हो गए। अब ये आए, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, अन्न इत्यादि से बहुत दुर्बल स्थिति हो गई थी, इसलिए पृथ्वी को ऊपर में बाण उठा करके मारना के लिए संधान किया। तू हरी हरी घास खाती है, तू तरह तरह के अन्न तुमको खिलाते हैं सब, और तू दूध को चुराती है, और अन्नों को देती नहीं है, प्रजाओं का पास पालन पोषण नहीं करती है, तेरा हम बद गए। वो डरती हुई गाय का रूप धारण करके उनके लिए कांपने लगी। बोलिए ऐसा मत कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ, गाय का वध नहीं होना चाहिए, आप मुझे गाय को वध कर रहे हैं, और इसमें भी मैं शरणागत आपके हूँ, आप तो भगवान के अवतार हैं, मैं आपके लिए रक्षणी और पालनी हूँ, ऐसा कीजिए दुग्ध पात्र लाइए, बछड़ा लाइए, जिससे देखने से मैं चिन्हा जाऊँ, चिन्हाना इसके मकान में दिखा जाना आपने, ऐसे नहीं होगा, दोहने वाला चाहिए, पात्र चाहिए और बछड़ा चाहिए, और मुझे दूध दीजिए। तब स्वामी ने मनु को बछड़ा बनाया, अपने श्रद्धा के पात्र में खुद उसका दोहन किया, और प्रजाओं को सुख शांति से सबको भी भाग करके पाना। चेतना करने के बाद में अब उनका पूजन है, पृथ्वी पूजन है, श्रीमद भागवत में भी श्लोक आए, उन्होंने पूजन किया। 100 यज्ञ यजन मैंने यज्ञ करने के लिए संकल्प किया, आर्यावस्त्र का वो ब्रह्मवस्त्र, अतः सरस्वती और जमुना के बीच, गंगा जमुना के बीच यहाँ पर सरस्वती की भी धारा मिलती है, उस स्थान पर उन्होंने यज्ञ के लिए स्थान चयन किया। 99 यज्ञ हो रहे, 100वां यज्ञ करेंगे। यज्ञ क्या? यज्ञार्थात कर्मणो लोकयमनत्र कर्म बंधर तदर्थम कर्म कंते मुक्त संग समाज। यज्ञ किसको कहते हैं? भगवान के प्रीति के लिए जो कुछ भी आप करेंगे उसका नाम यज्ञ। यज्ञ में भी बहुत तारतम्य है, सभी यज्ञ बराबर नहीं। ये भी जो यज्ञ कर रहे हैं, पशु लाए गए और उसमें तरह तरह के पदार्थ हैं, सब उसके द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन होता है, किंतु यज्ञ में हिंसा भी होती है। तो जिस पशु को अंत में हवन किया जाएगा, यज्ञ पशु को वहां पर रखा गया था, और इंद्र ने देखा कि ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो हमसे भी लोग उनका आदर करेंगे और हमारा आसन भी छीन लेंगे, इसलिए चोरी चमारी से जब जब पशु को लेकर के उड़ा दिया, लेकर के आकाश में जाने लगे। ऋषियों ने कहा कि इन्हें लेकर के भगा जा रहा है, तो इनके लड़कों ने देखा जैसे वो तो जा रहा है भगा हुआ, साथ में यज्ञ पशु है। तो भृगु ऋषि इत्यादि ने कहा मारो उसे। तो बाण संधान करने जा रहे थे, किंतु देखा जटाधारी कौशे लाल वस्त्रधारी, सिर में त्रिकुंडल और भस्म इत्यादि लगाए। अरे ये तो साधु आदमी, इसको तो नहीं कैसे मारे, मारो मारो ये पाषंड भेद, मारो। त्रिकुंड लगाए हुए है, ये संतों का चिन्ह नहीं है। त्रिकुंड लगा दिया, एक दिल्ली यहाँ दी और जटाजुट खूब लगा दिया। रावण सीताहरण के लिए जा रहा था तो कैसा बना, ऐसा ही लाल कपड़े जरिए नहीं, हाथ में दंड ले लिया और चुरा करके जा रहा था, मैंने पाषंडी देश बना था। इसलिए पाषंडी देश वालों को वैसा देश देकर के मत करी विद्या हो, ये भक्त हैं। उस समय इंद्र ने 10-15 बार उसको चुराया और 10-12 बार जो भी देश धारण की ये सब पाषंडी देश, जबकि ये बाण चलाया तो जब जब पशु को और ये देश दोनों को छोड़ करके वो खाते। कुछ लोग जो थे उन जो देश छोड़ गए थे उसको ग्रहण करते, तो वो लोग पाषंडी। फिर जब आरंभ किया फिर आए हाथ में नर्म मुंडले का सुखा क्या कहते हैं खोपड़ी, खोपड़ी सूखी हुई खोपड़ी, आप ऐसे किए गए और उसमें लाल रंग रख दिया और देश बनाया, त्रिशूल ले लिया और ऊपर से नीचे एकदम कपड़ा लाल और त्रिशूल हाथ बड़ा फैंकर, मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं उबड़ी खाबड़ी जिससे शरीर खुल जाएगा। अरे देखो इंद्र लेकर के जा रहा है, फिर बाण संधान, फिर उस देश को छोड़ करके और बस उसको छोड़ करके भाग। उसको भी कुछ लोगों ने जो देश छोड़ा हुआ था उसको ग्रहण कर लिया, वो नर कपाली थे, कपाली आजकल जरा कम देखते हैं, पहले ही ये सब होते कपाली। इसी की तरह से जितने देश चोरी करते समय उन्होंने धारण किया वो सब पाषंड रहे। इसके बाद में देखा जी लड़कों के द्वारा ये नहीं मरना, बस प्रचंड क्रोध करके हाथ में धनुष लिया और बैठे बैठे इंद्र को देख करके छोड़ दिया। यजमानों ने कहा अपने ऋषिकों ने, महाराज आप क्रोध मत कीजिए, आप शांत होकर के देखें, हम लोग उसको यहीं पर बुला लेते हैं और आग में हवन कर दें। वो शांत होकर के बैठे और उन ऋषिकों ने ऐसा मन से जप किया, कितना बजे 6:30 में 6 बज गया, ठीक कर दें। तो वो क्या करें बैठ गए और इंद्रम जजामहे ऐसा कह करके आवाहन किया और इंद्र वहां से सिंहासन में, सिंहासन उनका स्थिर था तो स्थिर सिंहासन समेत उनको खींच लिया। इंद्र घबरा और थोड़ी दूर तक पद से बाहर इतने ही थे जितने में पितामह जी को स्मरण किया, पितामह ब्रह्मा जी, अरे बेटा ऐसा मत करो, अरे इंद्र जैसा भी है प्रभु का अंश है, प्रभु की बहुत सेवा करता है, उसको आग में हवन मत करो, उन्हें छोड़ दो, तुम्हारा उद्देश्य सफल हो जाएगा, तुम्हारे वर्ष हो जाएगा। अरे तुम तो सात्विक पुरुष हो, तुमको क्या जरूरत है कि उनको नष्ट कर दो, शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर से पृथक है, जो लोग शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं वो पाषंडी ही बैठे बच्चे वीर तुम तो ऐसा नहीं है, तो तुम ऐसे सुखों के लिए क्या हरि की आराधना करता है? छोड़ो 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 ये सब। उनके कहने से उन्होंने छोड़ दिया, कार्य तुम्हारा जितने पूरा हो जाएगा तुम फिर आरंभ करो। बस यही आरंभ किया हैं भगवान विष्णु आंखों में शंख चक्र गदा पत्नी लिए हुए और इंद्र को अपने बगल में लेते हुए वहां के यज्ञ में उपस्थित। प्रभु जी ने कहा तुम्हारा यज्ञ पूर्ण, इंद्र को क्षमा कर दो, इंद्र हमारा ही अंश, इसके माध्यम से हम जगत का रक्षण और पालन पोषण करते हैं, इस पर तुम द्वेष मत रखो। तुमने जो इसने हमारा पूजन किया, क्या पूजन किया? स्वर्ग के उपचार से उनका पूजन किया, और जब जो मैं अपने भोग की लालसा से करते हैं जैसे सागर महाराज इत्यादि ने किया, किंतु सुखु महाराज जी का हरि का पूजन था, इसलिए इसमें शरीर और आत्मा में भेद दिखलाते हुए आत्मज्ञान से युक्त होकर के उन्होंने हरि की आराधना की, उसमें इस पूजन का उन्होंने तो एक पूजन करने से ही उसी पूजा यज्ञ का मुख्य था वो पूजन, इस यजन का उद्देश्य, इसलिए भगवान इसे यद्यपि यह मुख्य चीज नहीं है, सेवा नहीं थी, अभी ये प्रसन्न ये जगत व्यापार के लिए जगत की रक्षा करने के लिए ये यज्ञ किया था और भगवान प्रसन्न हो इसके लिए, इसे मुख्य तो ये नहीं है, जैसे गोपियों का मुख्य है भक्तों का मुख्य होता है, तभी भगवान प्रसन्न हो सके और उन्हें बढ़ सके। इस तरह से किसी पूजन किसी भी पूजा के और कैसे अर्चा देवी जिस प्रकार से उनकी पूजा करती है, ये इसीलिए उसका नाम अर्चन हो गया, अर्चा से अर्चन। हम लोग अर्चन करें सबसे बोल पत्र ये जो कुछ तुलसी इत्यादि देते हैं तो उसको उपचार करते हैं, अपना एक ड्यूटी कर्तव्य कर लेते हैं, मान लिया कि सारा जीवन भर जिनकी हम पूजा की या 20 वर्षों तक जिसकी हम पूजा की प्राण के समान समझ सकते, और मान लिया कि हमसे और पुजारी से किसी बात के लिए थोड़ी सी खटर बटर हो गई तो हम वो पूजा को छोड़ करके हम चले जाएंगे कि नहीं, तो वो पूजा कैसी पूजा हुई? जिसको इतना सजाया लाड़ पार किया और सब कुछ किया, अब भाई हमसे वो झगड़ा करते हैं, हमसे ये पूजन पूजन नहीं हो, तो आप सुधी व्यक्ति हैं, आप लोग विचार कीजिए जो पूजन किस लिए था, जिस पूजन में हमको किसी चीज की अपेक्षा नहीं, अपने प्राणों के काम से आसक्ति से हम पूजा कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? लड़ाई होगा तो हम ठाकुर जी को लेकर के चले जाएंगे, मीराबाई जैसे घर छोड़ी तो क्या किया, ठाकुर जी को छोड़ दिया, मेरे तो सर गोपाल ले लिया कोले में, कभी आंखों में बैठाती है कभी सिर पर रखती है और आंखों से उनका पूजन करते उनका स्थान, इसलिए पूजन वैसा होना चाहिए। ये तो शास्त्रीय उपमा हमने दिया, अब थोड़ा सा लौकिक की तरफ हम देख चले, मथुरा की बात, हमसे कोई एक महिला ही या कोई कह रही थी, यही अपने संतों की बातें कह रही थी, मैंने सत्य बात और प्रकृति भी ऐसी होती है जो ये बात ठीक हो, एक आदमी शालग्राम किला का पूजन करता था, उसे कोई जानता फानता नहीं, साधारण रूप में उसका नियम था जो 4 बजे भोर में वो जरूर जमुना स्नान करने के लिए जाएगा और स्नान करके जमुना का जल कलश में भरकर ले आएगा और रख करके फिर अपना तिलक अंधित ये सब कर करके बस ठाकुर जी का पूजन करेगा, उसी जमुना जल से ही करेगा और दूसरा कोई जल नहीं, और ठाकुर जी का भी स्वच्छ सबसे बड़ा पूजन कर सकते, जैसा अर्चन करना चाहिए वो अर्चन करना, बड़ी श्रद्धा के साथ। कुछ दिनों के बाद में होते होते 10-15 वर्ष ऐसा किया, एक दिन घना घोर अंधकार अमावस्या की रात और मार्च का महीना, हवा सनसनाती हुई चल रही थी, फुहारे जैसा वर्षा भी हो रही थी, वर्षा हो गई थी, अभी वर्षा बंद नहीं थी, रात भर रस बरसा रही थी। अभी भी यमुना में कुछ बाढ़ आई, रास्ते में यमुना में जानते हैं ना कि शाम घाट जाना है आपको और बाढ़ थोड़ी सी आ जाए पानी, तो वो पानी कहाँ तक आ जाता है, दुकानों से टकराता है, दुकानों में भी भर जाता है, विशेष करके पानी घाट का आ रहा है, वहाँ पर तो मानो प्रचंड धारा चलती है, तो मानो वो उधरी से आ रहा है विश्राम घाट पर स्नान करने के लिए। तो इसी स्थिति में छुटूरता हुआ, इसी प्रकार से उस समय सारा वर्षा थम गई 3 बजे के करीब में, वो समझा कि 4 बज गई, पहले तो खड़ी खड़ी नहीं देखते थे, हम लोग भी अपने जीवन में रात में उठते थे ध्रुव तारा से हम लोग अनुमान लगाते थे ये रात कितनी दी थी, और शुक्र तारा एक था, शुक्र तारा जब ऊपर में आ जाएगा और उसकी स्थिति से हम लोग जानते थे ये कितनी रात दिखती है कितनी, तो उस समय बादलों की वजह से वो तारा उगा नहीं, इसलिए उनको भ्रम हो गया, पहले ही चल दिए, घोर अंधकार हो, स्नान करने के बाद में तो वर्षा होने लगी और ऐसा अंधकार हो गया कि कुछ सीधे नहीं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, देखा जब अब आ रहा है तो कैसे चले क्या करें, देखा गया एक छोटा सा लड़का, लौंडा कहते हैं छोटा सा बच्चा है, हाथ में लालटेन लिए हुए बोरा उड़े हुए, बोरा को डबल करके ऐसे सिर में लगा देते हैं कछनी काटे, लालटेन लिए आ रहा और इनको तो रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो वो चलने लगा, तो लड़के ने बड़े मीठे आवाज से पूछा, बाबा कहाँ जाए वो किधर जाए वो, तो उसने कहा जिधर उनको जाना था ना, जिधर इनको जाना था, तो इन्होंने बतलाया कि हमको यहाँ साथ चलोगे रास्ता हम देखा, हमको तो उसी गली में जाना है, उसे एकदम गली का नाम बतला दिया, तो बच्चा 9 गजा या क्या क्या नाम है गजा पैसा है किसी गली का नाम बतला दिया, और जिसे भी छोटा सड़का जानता विश्वास हो गया, बस साथ में आगे आगे बच्चा पीछे पीछे कोई शब्द नहीं पूछने, तो चलिए ये रात में लड़का कैसे आया और उसी लालटेन के साथ में उसको क्या जरूरत पड़ी, सुख सुता हुआ बोरा चल तो दिए, चलने के बाद में बाबा अपने गली में आ गया ना, हमको सीधा चलना है, तुम घर में अपने गली में चले जाओ, वो ये तुम्हारा घर है ना, तो जब वो इधर मुड़े और मुड़ करके फिर बच्चे की तरफ में देखा, उस संदेश आ गया, उसके तरफ में देखा तो न हरिजन है न बच्चा है, बस हाथ मलते रह गए, ये ठाकुर जी हमारा नियम रक्षा करने के लिए इस प्रकार देश में हरिजन लेकर के रास्ता दिखा करके, ये है अर्चन पूजन, जिसके अंदर में अपनी निष्ठा ठीक रख करके भगवान का ठीक से पूजन करना है, अपने सुख दुख का ख्याल नहीं उस पूजन के लिए, तो इसको कहते हैं भूख, इस भूख के साथ में प्रेम के साथ में यदि कोई भगवान का यजन करे तो क्यों नहीं लेंगे, इसलिए प्रजतात्मन प्रयत्न करता हुआ श्रद्धापूर्वक प्रेम से जो हमारा अर्चन पूजन करता है, ऐसे नहीं गुरु से गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी से कुछ बात बतंगड़ बन गई और गुरु जी ने डांट दिया थोड़ा सा, पहले तो बहुत नहीं किया था, तो बहुत उत्साह हमारी खुशी थी ना, अब कुछ घन तरवा हो रही है, सरल भी हो गए, बस गुरु जी ने कुछ कह दिया तो गुरु जी ने ऐसे कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि गुरु जी ये रही, ये है तुम और ये रही तुम्हारी सेवा। जय सिया राम। ऐसा नहीं, परीक्षा तो तब होती है जबकि कठिनाइयों में भी उनकी सेवा नहीं। और ऐसे सेवकों को प्रभु भी जन जन्मांतर में नहीं छोड़ते हैं, वो गुरु भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह से अभी एक और मुझे स्मरण हुआ है पूजन का, अभी भूल गया, अभी हृदय में कौन सी थी फिर अभी भूल गया, बातें भूल जाती हैं। तो पूजन जैसा भी हो, इस उदाहरण के द्वारा ये पूजन ऐसा है। परिक्रमा भी पूजन का अंतर्गत ही समझ लीजिए, है तो भी ये सब चीजें श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के बाद में अध्ययन में ही ये सब ऐसे ही। हाँ अभी याद आ, आप लोग सुने ही हैं, बहुत बार इसको सुने, कोई ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा पूजा करता था और सेवा पूजा करने के बाद में भोग लगाता था, उसको कुछ महीना मिलता था, राजकीय कोष से या कहीं से कोई उसको महीना देता था, वो कृतक पूजक था। कृतक पूजक माने क्या? कुछ पैसा लेकर के वो पूजन करता, तो पैसा लेकर के जो पूजन करेगा तो पैसा और ठाकुर जी में दोनों में उसकी खुशी किसमें अधिक रहेगी? तो भाभी पैसा नहीं देगा पूजा हम नहीं करेंगे, पैसा देंगे पूजा करेंगे। देहातों में बंगाल में ऐसा नियम है, दस घर में पूजन करना होता है, कह देगा जैसे देखो पपी पकाई ही चीज भोग में मत लाना, हम नहीं लगाएंगे, कच्ची चीजें चावल है सब्जी है फल है ऐसी चीजें तुम लोग रखो, वही चीज। तो वो जाएगा जब ठाकुर जी को दिखलाएगा कच्ची चीज चावल चावल दस घरों से चावल फूल पूजा ये सब ले करके कपड़े कपड़े तो अपने गमछे में एक तरफ में बांधता चला जाएगा और एक घर से दूसरे घर तीसरे घर दस घर में पूजा करके अंत में देखेगा कि कितना माल हुआ अपने घर में लौट। ठाकुर जी को पूजा से कोई एक पैर जाएगा भीतर में दूसरा बाहर ही रहेगा, ठाकुर जी को निवेदन कर देगा। इसको भूतक पूजक कहते हैं, ये पूजक नहीं है। तो कोई ऐसा ही था कहीं से उसको पैसा मिलता था और पूजा करता था, उसको कहीं बाहर जाना था। उसने अपने लड़के को बड़े प्यार से कहा कि बेटा ब्राह्मण का बेटा है, मैंने तुमको सिखाया तो नहीं अर्चन, फिर भी तुम ठाकुर जी का पूजन पूजन स्नान करा करके उनको भोग लगा दो, जैसा कहते वैसे कर दूंगा। बस उसकी मैया ने रोटी वोटी बनाई और सब्जी भी तैयार की, इसने ठाकुर जी कहा ठाकुर जी स्नान कर लीजिए, बर्तन में उनको रख लिया और गंगा जल इत्यादि से तुलसी के साथ में उनको कहा जी प्रभु जी आप स्नान कीजिए, बस स्नान करा करके धूप धूप करके कपड़े पहना करके उनको आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। भोग लगाने की बारी आई, तुलसी उसने छोड़ दिया, कहे ठाकुर जी अब आप प्रसाद भोग आरोपिए, मैं मंत्र वंत्र तो कुछ जानता नहीं हूँ, बस आप प्रसाद पा दी, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, खड़ा हो गया। उसके पिताजी तीन चार मिनट में भोग लगाते थे, ये दस मिनट पंद्रह मिनट आठ घंटा तक खड़ा रहा, किंतु देखा जे थाली की तरफ में तो वो कुछ खाया नहीं प्रभु ने। तो पिताजी भोग लगाते हैं तो आप बड़े चाव से खाते हैं और मैं भोग लगाया, मंत्र नहीं जानता इसलिए नहीं खाएंगे, हमारे पिताजी ने कहा है ये तुम भोग लगा देंगे, और पिताजी चले गए आप भूखे न जाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा जब तक कि आप नहीं खा लेंगे। सचमुच बड़े सबसे कहा मंत्र का भाव यदि ऐसा न रहे तो वो मंत्र काम नहीं करता, भाव के लिए मंत्र होता है जो भाव को जगाए, और जो भाव ही रूप का रह करके सेवा करेगा। ठाकुर जी कहते हैं तो वो कहा कि प्रभु आप नहीं खाएंगे मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, और अभी जब लगाएंगे तो मैं इसको उठा करके रख दूंगा, मैं भी बिना खाए पिए सो जाऊंगा। कुछ देर के बाद में भगवान से रहा नहीं गया, झट सिंहासन से उतर आए और आसन पर बैठ करके दोनों हाथों से उन्होंने खा लिया, एक भी रोटी शेष नहीं रखी, सब खा लिया। बड़ा प्रसन्न हुआ और थाली लेकर के घर पहुंचा। मैया से मैया वो तो आज खा ही नहीं रहा है, ऐसे खाए बड़ी मुश्किल से, बहुत कुछ उलाहना देने पर सब उन्होंने खा लिया। तो खा लिया, रोटी कहाँ गई, रोटियां कहाँ, तो उन्होंने खा लिया। खा लिया ही कैसे हो,